पेज नंबर 113। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे कि पानी बूंदों की झालर में उसकी दीप्त छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, उनका दुपट्टा उनका अहर्निश जागर न भींजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगत जननी आद्याशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौट कर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण हैं, सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती हैं, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बिनती है, जलाकर अंजोर करती हुई है, और जुड़वा बच्चे का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनाता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है, वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा दे देता है, और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसथार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पुलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बची रहती है, दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राज मुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर तीखे और निर्मम, पुरा यत्र श्रोता पुलिनम मधुना तत्र सरिता विपर्यशम, यतो धन विरला भावम क्षितिरुहाम, वहो काला दृष्टम ह्यापमेव मन्ये वनमिदं निवेशम, शैलानं तदद्मिति बुद्धिं दृणदयति। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं, और उस वेदना के चीत्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की दस्तखत पड़ी। चिरंजीव निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते ही नहीं बना, सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने छुआ नहीं, मुंह ढांप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्ध चेतना अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ वहीं लौट आया। अपने लड़के घर आए, बारिश से नहीं संगीत से भीग कर, मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश की पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं, तने पर टिके तो उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं, और बादल है कि मूसलाधार ठरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए तुम, जिनकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई हो भी सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम? और चोर की बात सच लगती है, मन कितना बटा हुआ है। मन चाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीजों में दूसरे कुछ पतियाए भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी और का हूँ या कोई मेरा है, पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार-बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है, पर चिंता क्या पराए के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं? फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या ना कुछ होना और ना कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है मेरे राम का, भूख मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ? अपनी उदासी से ऐसे चिपकाओ, अपने सकरे से दर्द से ऐसे रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगलों में हेरा गया हूँ, जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आता है, वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा और अमूचर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता, नहीं तो कुछ नम तो जरूर ही हो जाता है। और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है, बरस न पाए यह बात अलग है, कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है घर के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है, उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीय स्थल बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उसके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी, केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में, अनसोए वात्सल्य का स्वर तलाशता रहेगा। किस ओर नाम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी।